अपर रेडियो प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। एक श्रोता से बातचीत और उनकी पसंद के चंद फिल्मी गीत।
हमारे आज की श्रोता साथी हैं चरडोंगरी पिपरिया कबीर धाम से दुर्गा राम साहू और इनसे बातचीत कर रहे हैं सुनील चिपड़े।
नमस्कार, कार्यक्रम आरपा रेडियो में आप सभी का स्वागत है। ये कार्यक्रम है सप्ताह के श्रोता और आज के हमारे श्रोता हैं दुर्गा राम साहू जी। दुर्गा राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
धन्यवाद सर।
दुर्गा राम जी, आप चरडोंगरी से हैं और हम जानना चाहते हैं कि हमारी जिनसे बात हो रही है, श्रोताओं तक जिनकी बात पहुंच रही है, दुर्गा राम साहू चरडोंगरी से, ये चरडोंगरी कहाँ है?
ये सर, मेरा नाम दुर्गा राम साहू, ग्राम चरडोंगरी, पोस्ट पिपरिया, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ से। अच्छा। ये अपने पिपरिया कबीरधाम जिले से।
अच्छा।
8 किलोमीटर के दूरी पर अपन चरडोंगरी पड़ता है और उसी से लगा हुआ अपन क्षेत्रीय कहा जाए तो, एक मार्केट कहा जाए तो पिपरिया है।
अच्छा।
तो पिपरिया और चरडोंगरी 3 किलोमीटर के अंतराल में है।
अच्छा।
और इसी बीच में अपना मेरा जो गाँव है, ग्राम पंचायत चरडोंगरी है, आश्रित ग्राम झेरना है। जो झेरना एक प्राचीन मंदिर में है, वहाँ जो हमारे बाप दादा जमाने से मतलब चले आ रहे हैं, वहाँ जो 11वीं शताब्दी का एक मंदिर भी है शिव जी का, और यहाँ भव्य मेला भी लगता है माघे पूर्णिमा में। और यहाँ हम लोग जैसे हम रेडियो सुन रहे थे तब से एक भाव बना कि रेडियो से हमको क्या ज्ञान और क्या शिक्षा और क्या सम्मान दूसरों को देना है या लेना है, उनसे रेडियो के माध्यम से बहुत कुछ मुझको मिला सर।
जी जी, दुर्गा राम जी, रेडियो की बातचीत तो करेंगे ही, हिस्से दर हिस्से बात करते चलते हैं ताकि गीत सुनने का भी मजा आए और बेहतर क्रम से बातचीत हमारी पहुंच जाए।
जी जी,
हम रुकते हैं चरडोंगरी में ही। चरडोंगरी जो आपने कहा कि आश्रित ग्राम झिरना का आश्रित ग्राम चरडोंगरी है कि चरडोंगरी का आश्रित ग्राम झिरना है?
चरडोंगरी का आश्रित ग्राम झिरना है,
मतलब झिरना एक चरडोंगरी से एक छोटी जगह और है झिरना।
जी जी जी,
है ना। तो ये जैसे आपकी बातचीत से ये समझ में आ रहा है कि कोई एक गांव है, उसके आश्रय में कोई छोटा गांव होता है।
जी जी।
तो हमारे बहुत सारे सुनने वाले हैं जो गांव के हैं, शहरों के हैं, कुछ युवा भी हैं।
जी,
ये आश्रित गांव जो है ये किसे कहते हैं और ये क्यों होता है आश्रित?
वो क्या है कि सर, ये राजनीतिक ये दृष्टि से देखे जाए तो एक समूह बनाया जाता है कि मतलब चलो एक निर्धारित टाइम कर देते हैं कि निर्धारित मतलब जनसंख्या, जैसे 1000 का जनसंख्या है ये गांव, तो उस हिसाब से उस बड़ा गांव में चला जाता है और उससे कम होता है तो उसके पास जो लगा हुआ रहता है गांव उसको उसी में जोड़कर वो हो जाता है आश्रित गांव।
अच्छा।
और एक समूह है, अब समूह बना दिया गया मान को चलो, जैसे हम लोग एक एक आदमी मिलकर अगर कोई काम करते हैं तो ज्यादा टाइम लगता है, और उसी काम को हम 4 मिलकर अगर काम करें तो काम जल्दी भी हो जाता है और उससे मतलब सभी को संतुष्ट भी हो जाता है।
इतनी हम आपकी टूटी टूटी बातों को समेट पा रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि एक निश्चित जनसंख्या के बाद ही एक संपूर्ण स्वायत्त उस गांव को, ग्राम सभा को दिया जाता है।
जी जी।
तो चरडोंगरी एक ग्राम पंचायत है और क्योंकि झिरना में एक निश्चित आबादी नहीं है, जो एक ग्राम पंचायत होने की एक आबादी का जो पैमाना है वो नहीं है, ग्राम पंचायत चरडोंगरी के भीतर उस ग्राम झिरना को रखा गया है,
रखा गया
है ना, ताकि उसका जो प्रबंधकीय काम है, राजनीतिक
जो व्यवस्था है
और जो व्यवस्था है, जो ग्राम पंचायत हमारे अंतर्गत है, वो व्यवस्था सुचारू रूप से लागू हो जाए।
जी जी,
ठीक है, मैं अपनी बात ठीक से कह पा रहा हूँ? चरडोंगरी कैसी जगह है
ये? चरडोंगरी अपनी एक आबादी भी कम है और जनसंख्या भी कम है। ये अपने जो अपने क्षेत्रफल है गांव का, रकबा कहा जाए, तो जो रकबा है उस रकबे के बीचों बीच में,
अच्छा,
चारों तरफ के बीचों बीच में अपना एक बस्ती है। वो बस्ती से चारों तरफ की गुजर भी करने के लिए जो काम धाम, जो बाहरी के आवागमन व्यवस्था, जो पक्की सड़कें हैं, वो पक्की सड़क है और चारों तरफ के लिए जाती है।
अच्छा।
जिसमें वो बीच में चारों मुड़ा बस्ती हो गया है और उसी रोड से आवागमन का सुविधा है, जिससे गांव वालों को भी और अन्य एरिया के लोगों को आने जाने में ज्यादा सुविधा मिलती है। अपना स्वास्थ्य केंद्र है, मिडिल स्कूल है अपन शासकीय प्राथमिक शाला चरडोंगरी, और एक प्राइमरी स्कूल है।
ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो चरडोंगरी में है
जी,
और आवागमन के साधन भी है। आज मेहमान हैं कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता में दुर्गाराम साहू जी, चरडोंगरी पिपरिया कबीरधाम से। दुर्गाराम साहू जी, आपसे जो बातचीत हो रही थी उसमें चूंकि जिला कबीरधाम है, तो कबीरधाम के आसपास जो है कौन सी जगहें हैं जो हमारे सुनने वालों को आप बताना चाहेंगे कि हाँ यहाँ जरूर जाइए?
ये तो बड़े खुशी की बात कह दिया सर आपने। मैं चाहूंगा अपने मित्रों से कि कभी भी जैसा समय मिलता है तो जरूर कवर्धा जिले के अपने नजदीक में कवर्धा से 16 किलोमीटर की दूरी पर भोरम देव मंदिर है।
अच्छा,
जो खजुराहो का मंदिर कहा जाता है, जो छत्तीसगढ़ का प्राचीन भी है।
छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है उसे।
जी जी सर,
जी जी हाँ।
वो स्थल भी एक रौनक जगह है और एक पहाड़ी इलाका भी है। वहाँ का जो वातावरण और जो दृश्य है मनमोहक भी है और सुहावना भी है, जिसमें अगर हम भोलेनाथ की दर्शन कर लें और थोड़ा सा शीतल जल ले लें तो कितना जो आनंद आता है वो मैं बता नहीं सकता। इतना वहाँ का शीतल है
जी।
और एक हवा भी वहाँ का सुंदर है
जी।
जो अपने गांव एरिया से हटकर जब हम पहाड़ों में जाते हैं और हरे भरे जंगलों को देखकर मन में जो खुशी आती है वो बहुत ही ज्यादा रहता है सर।
क्या बात है, आपने हरियाली का, पहाड़ का, उस मंदिर का दृश्य खींच दिया। तो भोरम देव में भी लोग पिकनिक वगैरह मनाने आते होंगे, अभी दौर तो पिकनिक का है।
वो तो अभी तो सर दौर तो नहीं, पूरा चालू हो गया है। वहाँ तो बाहर बाहर के मतलब लोग आते हैं, पर्यटन स्थल भी है वो। और जगह भी ऐसी है जहाँ पे हम जाकर बैठेंगे वो सुंदर भी जगह और हरियाली जगह, वहाँ मतलब एक व्यवस्था भी बन गया है। और हर साल महोत्सव का मतलब वो मेला भी होता है, बड़े बड़े वहाँ मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी आ चुके हैं।
अच्छा
जी सर,
उत्सव जो होता है वहाँ पर।
जी जी सर,
अगर हम
जी जी सर
आप बात कह रहे थे वहाँ के प्राकृतिक सुंदरता की और जो ऐतिहासिक महत्व का मंदिर है उसकी,
जी जी सर,
तो हम ये भी बात जोड़ गए कि पिकनिक और तमाम चीजें हैं उसके साथ जुड़ी हुई।
जी जी
तो
सर, जी।
चूंकि आप वहाँ आसपास के रहवासी हैं, आप आसपास के रहवासी होने के नाते जो बाहर से लोग वहाँ पे पर्यटक आते हैं या पिकनिक मनाने लोग आते हैं, उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं कि किस तरह की व्यवस्था के साथ वे आए और क्या सावधानी बरते?
अब वो ऐसा है सर जी, देखो अब स्वयं की भी मतलब व्यवस्था होना चाहिए और जो वहाँ का जो माहौल जो तैयार है, जो व्यवस्था है, जो क्षेत्रीय का भी व्यवस्था है और शासन प्रशासन का भी व्यवस्था रहता है कि हमको दूर से आ रहे हैं तो अपना स्वयं का सुरक्षा भी करें और जो यहाँ गए हैं तो उस वातावरण का भी हम व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं। जैसे कहा जाए तो स्वच्छता है, अब हम मान ले जाए वहाँ गए हैं, अपना खाना वाना बना रहे हैं, सब बोरिया बिस्तर धर के गए हैं और वहाँ जाने के बाद हम अपना व्यवस्था तो जमा लिए, खाना पीना सब कुछ खा लिए और उसको हम वहीं छोड़ दें तो स्वयं को भी मतलब वहाँ व्यवहार में गलत आएगा और वहाँ का जो रहनवासी है, जो प्रशासन का जो व्यवस्था है
जी जी जी।
उसमें भी मतलब टूटी आएगी। इसलिए वहाँ का व्यवस्था भी सही होना चाहिए, सही अनुरूप के हिसाब से हमको चलना भी चाहिए और दूसरों को भी एक सीख देना चाहिए ताकि हमको कोई भी प्रकार से कोई ऐसी बात किसी के माध्यम से ना मिले कि आप जो वहाँ गए पिकनिक मनाने और वहाँ गंदगी फैला दिए।
जी जी, मतलब स्वच्छता का ध्यान रखें,
स्वच्छता का ध्यान भी।
हाँ, यदि आपने पिकनिक मनाई है तो जाते हुए सारा
सामान को समेट लिया जाए और समेट जहाँ मतलब रखना है उस सामान को, जहाँ व्यवस्था है वहाँ कूड़ेदान में लेकर उसको डाल दीजिए,
तमाम कचरा जो है व्यवस्थित जगह जहाँ उसका निपटारा करके जाए।
जी जी सर, अपना एक लगा हुआ है, अपना एक बांध है डैम जो कवर्धा से अपन 10 किलोमीटर के अंतराल में सर।
अच्छा,
सरोधा बांध कहा जाता है, जलाशय।
अच्छा,
तो वहाँ भी मतलब एक पिकनिक मनाते हैं, शासन प्रशासन के द्वारा भी वहाँ मतलब बनाया गया है, गार्डन बना गया है, वहाँ रहने का व्यवस्था भी है और पानी आसपास में जो व्यवस्था भी कर दी गई है कि लोग आए, वहाँ भी मतलब जंगल झाड़ी है।
तरोधा जलाशय जो है,
जी जी,
अनुमानतः आपके हिसाब से वो कितना बड़ा है?
वो कम से कम सर वो अब इतना तो 3 किलोमीटर के अंतराल में है सर वो।
अच्छा अच्छा,
जो उसका जो एरिया है,
जी जी,
जो पानी का भराव है, जैसे पानी का भराव हम ज्यादा लेते हैं ना तो 5 किलोमीटर की दूर चला जाएगा सर।
अच्छा,
क्या है कि बरसात में वो ज्यादा हो जाता है कि जंगल इलाका है तो पीछे तरफ जो खाली जगह छूटा हुआ है
जी
उसमें भर जाते हैं और बाकी खाली समय जैसे गर्मी आता है तो कम हो जाता है। तो वहाँ लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, जैसे पर्व आता है जैसे भोरम देव से लगा हुआ सरोधा जलाशय है, तो यहाँ से भोरम देव चले जाते हैं लोग इधर से उधर आने आवागमन, जैसे सावन सोमवारी आता है अपना उस दिन कहा जाए तो अपन जो पहले चला गया वो दर्शन पाने में सक्षम हो जाता है, और थोड़ा लेट हो जाए ना सर तो दर्शन करने में थोड़ा तकलीफ हो जाता है, 3 घंटा 4 घंटा इंतजार करना पड़ता है, इतना भीड़ रहता है।
हाँ, मतलब इतने लोग वहाँ पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए कि यदि आप पहले पहुँच गए तो बेहतर तरीके से दर्शन कर पाते हैं।
जी 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 सर। तो
ये तरोधा जलाशय की बात आपने की है और उसके 3 किलोमीटर और भराव के साथ 5 किलोमीटर की भी लगभग लगभग बात की आपने।
जी जी।
आप क्या ये बता पाएंगे कि तरोधा जलाशय के वहाँ के आसपास किन किन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति होती है?
अब वो सर्वप्रथम तो सर अपने कवर्धा जिला में पहले रहनवासियों के लिए पानी का सप्लाई होता है, और साथ ही साथ वहाँ से जो नहर बना है वो नहर जो बना है अपने नीचे ही अपने गांव के एरिया में आया है।
अच्छा।
खैर कहीं न कहीं मेरा गांव थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया है तो उसलिए मेरे गांव को नहीं पाता है, लेकिन जो ऊपर भाग में ये करीबन 30 किलोमीटर के अंतराल तक लंबाई इसका है जो नहर नाली का।
अच्छा।
ये वहाँ से मतलब निकलता है ना तो धीरे धीरे जो गांव पड़ते आता है उस गांव तक वो पानी दोनों तरफ एक नाली बना दिया गया है छोटा सा, और एक पाइप लगा दिया गया जिससे खेतों में पानी जा सके, तो उसका पानी का पर्याप्त भराव भी हो जाता है और किसानों को भी इधर पानी पर्याप्त मिल जाता है, समय समय पे चालू किया जाता है उसका, जैसे समय मांग बढ़ता है किसानों की ओर से कि खेतों में पानी की आवश्यकता है या गाँव में तालाब को भरना है उस हिसाब से उसको पानी का छोड़ा जाता है, जिससे पानी भी ज्यादा खपत ना हो बाहर ना जाए, जो जितना पानी हमको उतना ही आवश्यकता के हिसाब से वहाँ चालू किया जाता है, ये व्यवस्था है वहाँ सारा।
चलिए, मतलब तरोधा जलाशय कवर्धा की जलापूर्ति तो करता ही है, आसपास के तमाम खेतों तक उसका पानी पहुँचता है।
हाँ जी सर।
ठीक है, तो बताइए कि अब अभी हमारे जेबों तक, हमारे मोबाइल तक कौन सा गीत पहुंचाने वाले?
अब इसके लिए सर जी पलकों की छांव में डाकिया डाक लाया।
ओहो।
अब ये ऐसा है सर, अब कहीं न कहीं हम जुड़े हैं एक रेडियो से ही जुड़े हैं, और रेडियो के ही माध्यम जो हमें जो प्रेरणा मिली है।
जी जी।
तो पहले हम रेडियो से जुड़े सुने थे, सुनने के बाद तो लिखना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ।
एक खाकी ड्रेस, खाकी टोपी लगाए व्यक्ति जरूर नजर आया होगा। तो दुर्गाराम साहू जी, आपने उस डाकिये का चित्र हमारे समक्ष खींचा, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और गीत के पहले हमारी बात भी हो रही थी कि क्योंकि रेडियो और पत्र, श्रोता, प्रस्तोता, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, और इस जोड़ने की कड़ी के बीच अनजाने में ही एक डाकिया व्यक्ति होता है जो हमारे खतों को, दूतों को लेकर एक दूसरे तक पहुंचता पहुंचाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। और आजकल उस दृश्य की तरह वो डाकिया समाप्त हो चला है, लेकिन बहुत सारे दूसरे माध्यम भी आ गए हैं जिसका उपयोग अर्पा रेडियो भी करता है, ईमेल है और गूगल
के बाद
व्हाट्सएप से, तो ये तमाम माध्यम इस्तेमाल करते हुए अर्पा रेडियो भी आप तक पहुंच रहा है, लेकिन पत्रों की अपनी महत्ता है। तो आपने थोड़ी सी बात जरूर शुरू की थी पत्रों की, तो बताइए कि आप पत्रों का, रेडियो का आपका सिलसिला किस तरह शुरू हुआ और कैसा रहा?
अब वो ऐसा है सर, गांव में रहते हैं और खेती बाड़ी भी है, तो पहले उस समय तो उतना मुझको जानकारी नहीं था कि रेडियो क्या है कैसा है क्या। उस समय मेरे घर में मेरे बाबूजी बढ़ाई भी थे।
अच्छा।
तो वो खेती भी करते थे, तो हम लोग लकड़ी धर कर, मैं और मेरे बाबूजी और मेरे भैया अपने पिपरिया गांव गए, वहाँ एक लकड़ी चीरने का एक मिल था।
अच्छा।
आज भी है वो मिल। और जो वहाँ का जो शेर था वो हम लोगों के बाबूजी के साथ उसका संबंध अच्छा थे, क्या है कि बढ़ाई भी था तो आवागमन थोड़ा लगा हुआ रहता था। अब उतना पढ़ा लिखा तो नहीं था पहले जमाने के हिसाब से, तो वही रेडियो सुना।
अच्छा।
एक आय बर्थे का मतलब एक चर्चा चली, अब पूछे मैं हाँ एक आय बर्थे का कैसे बजट हुआ इसे कही के, और उस समय लाइन का वही व्यवस्था कम था। तो बोली जो है ये है इसे बेटा, ये बहुत दूरिया लाते आ बिलता घर में लेकबे ना तब ये जानबे तो ऐसे कही। तब वो मुँह थोड़ा वो उठा, मैं अब सियान मन के बात के थोड़ा सम्मान करे पड़ी, लेकिन जिन हिसाब से वो आज मुझे ज्ञान और शिक्षा दी कि लेगे के बाद ही काहे किस दिन सब समझ में आते, तो कहीं न कहीं एक आध दो महीने के बाद लेक लीच वो समय 250-300 रुपया रही से रेट होकर जिन अपन पैरा माउंट के जिन अपन लकड़ी के आत रहे से वो आज भी है मेरे पास। बिगाड़ तो गया है जरूर लेकिन उसको सुरक्षित रूप से रखा हूँ मैं आज भी।
क्या बात है।
और छोटे छोटे बाद में जो सिलसिला चला सुनने का मौका जब शुरू हुआ तब ये सब आगे बढ़ते गए। मेरा जो उम्मीद कि मैं भी पत्र लिखूं मैं भी सुनता रहूं तो धीरे से मतलब कहा जाए तो एक मन में लगन और जो प्रेम रेडियो के प्रति बढ़ता गया तो धीरे धीरे रात होता खासतौर से ज्यादा हम चौपाल पहले सुनते थे यहाँ के खेती बाड़ी के हिसाब से और भजन भी जैसे गीत भी आते थे छत्तीसगढ़ी
जी।
तो गांव स्तर के हिसाब से वो समय एक प्रचलित था।
तो जब चौपाल सुनते थे और तमाम रेडियो सुनते थे जो हम बात कहना चाह रहे थे या करना चाह रहे थे दरअसल पत्रों की थी।
जी जी सर मैं बता रहा हूँ सर।
हाँ तो ये पत्रों का सिलसिला कैसे शुरू हुआ और अभी लगभग लगभग आप कितने केंद्रों में पत्र भेज चुके होंगे और यदि आपको वो संख्या याद होगी कि हाँ आज तक आपने रेडियो के लिए इतने पत्र लिखे।
पत्रों की संख्या तो खैर नहीं बता पाऊंगा सर लेकिन हफ्ते के एक अंतराल में जैसे महीने में 30 दिन 28 दिन होता है तो मैं 2 दिन पत्र लिखता था शुरुआत में और बीच में।
अच्छा।
तो करीबन वहाँ 400 या 500 पत्र को 2 दिन में उसको कवर करता था।
अरे
तो उस पत्र को मैं कम से कम 80 या 85 के अंतराल में आकाशवाणी केंद्रों में भेजता था।
अच्छा।
वही बीच में दूरदर्शन भी है अपना।
हफ्ते में जो मैं समझना चाह रहा हूँ
जी सर
कि हफ्ते में लगभग 100 से 150 पत्र आप लिखते हैं।
जी सर
और वो तमाम 100 से 150 पत्र लगभग लगभग 80-85 केंद्रों तक पहुँचते थे।
हाँ पहुँचते थे सर।
मतलब
और उस समय
महीने में लगभग 600 पत्र आप लिख लेते थे 500-600।
जी सर उसी दौर में अपना वॉइस ऑफ अमेरिका भी सुनता था रात में, जर्मन भी सुनते थे, एशिया भी सुनते थे, श्रीलंका को भी सुनते थे लेकिन श्रीलंका में कहीं ना कहीं बहुत कम मौका मिला मुझको। लेकिन बाकी जगह मुझको मौका मिला लेकिन आजकल तो अब वहाँ का प्रसारण हिंदी प्रसारण भी बंद हो गया है।
ये जो पत्र भेजते थे अब अधिकांश पत्र वो क्या होते थे, फरमाइशी होते थे, किसी कार्यक्रम की समीक्षा होते थे, कोई सवाल जवाब के कार्यक्रम होते थे, किस किस तरह के कार्यक्रमों में ये पत्र होते?
वो तीनों कार्यक्रम थे सर। क्या है समीक्षा लिखने में थोड़ा कम टाइम मिल पाता था, आजकल फरमाइशी के दौर क्या नाम का लगन जो प्रेम का लगन है कहा जाए सर, नाम सुनना है तो किसमें सुना जाए, तो फरमाइश जितना भेजो
क्या
तो समीक्षा लिखोगे तो समीक्षा लिखने वाला मैं भी एक व्यक्ति नहीं रहूंगा, वहाँ तो हजारों हैं तो हजारों में कम शामिल होता है तो इसलिए उसको ज्यादा भेजता था। तो कहीं न कहीं जैसे मान लीजिए 15 दिन का कार्यक्रम, 15 दिन का कार्यक्रम में एक दो चिट्ठी प्रशंसा का जरूर भेजता था कार्यक्रम सुनकर। कार्यक्रम तो सुनता जरूर था लेकिन उस हिसाब से उस समय मुझको अनुभव नहीं था। धीरे धीरे सब अनुभव होते गए, जब सुनते जब कार्यक्रम ही सुनेंगे तभी हमको अनुभव होगा कि किस प्रकार का हमको पत्र लिखना है और कैसा लिखना है, ये सब धीरे धीरे अनुभव हुआ।
हाँ दुर्गाराम जी वाकई जो ये बातचीत सुन रहे होंगे वो भी अपने अनुभवों से कनेक्ट हो रहे होंगे कि ऐसे बहुत सारे श्रोता हैं जो लगातार पत्र लिखते रहे हैं, देश विदेश के प्रसारण केंद्रों में पत्र जाते रहे हैं, फरमाइशी पत्र, समीक्षा के पत्र, प्रश्नोत्तरी पत्र, ये तमाम पत्र जो हैं लोग भेजते रहे हैं केंद्रों में। इन चिट्ठियों का बहुत महत्वपूर्ण काम ये रहा है कि वो आपको समीक्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं, मतलब मन में विचार उमड़ते हैं, उसे आप कागज में लिखते हैं, साथ ही बहुत सारे सवाल आप पूछते हैं अपने प्रस्तोताओं से। तो इन सवालों और विचारों के साथ एक अलग तरह की लिटरेसी, एक अलग तरह की जागरूकता आपको हासिल होती है। गाँव में शहरों में अलग अलग तरह के लोग पढ़े लिखे होते हैं, पत्र आपको एक तरफ लेकर के जाते हैं जो है शिक्षा का काम करता है।
जी।
तो हम उन पूरे कहना चाहिए पूरे डाक विभाग को और उन तमाम खाकी वर्दी वाले डाकिये लोगों को कार्यक्रम के माध्यम से सलाम करते हैं। आपने बहुत अच्छी बातचीत छेड़ी है। सप्ताह के श्रोता में दुर्गाराम साहू जी हमारे साथ है चरडोंगरी पिपरिया कबीर धाम से। नील गगन पे उड़ते बादल, ये बड़ा ही सुरीला गीत आपके माध्यम से हम सुन पाए और जिस तरह से नील गगन पर उड़ते हुए बादल हैं वैसे ही हमारी फ्रिक्वेंसी के माध्यम से, हमारी वेब फ्रिक्वेंसी के माध्यम से हमारी आवाज, हमारी बातचीत, हमारे कार्यक्रम आप तक पहुंचते हैं अर्पा रेडियो के माध्यम, अर्पा रेडियो के मार्फत। तो अर्पा वेब रेडियो और अर्पा कम्युनिटी रेडियो को सुनने वालों का बहुत बहुत आभार कि लगातार आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहते हैं। और बातचीत हमारी जारी है दुर्गाराम साहू जी के साथ। तो साहू जी, आपने जिक्र किया था शिव मंदिर का, और शिव मंदिर में मेले ठेलों का काफी आयोजन होता है। हमारी जो देश की परंपरा और खासकर छत्तीसगढ़ की परंपरा है, उसमें शिव मंदिर के आसपास बहुत सारे मेले होते हैं।
जी जी।
तो आपने कहा, बताया था कि आपके जो चर डोंगरी है और कबीर धाम है, झिरना है ना, वहाँ पे शिव मंदिर भी है।
जी जी।
तो वो मंदिर में किस किस तरह के मेले होते हैं?
अब ये ऐसे है सर, देखो चारों तरफ से आते जाते रहते हैं लोग, और जो बाहरी पर्यटक आते हैं, वो बाहरी जो आते हैं उसी गाँव स्तर के जो मेला है सर।
साहू जी, जी, जी। किन किन दिनों में उस शिव मंदिर में मेला भरता है?
अच्छा अच्छा, जैसे अपन 14 जनवरी आएगा मकर संक्रांति, ये मकर संक्रांति के दिन नहाने के लिए जाते हैं लोग
जी,
उस दिन भी मेला लगता है। तो वो छोटा रहता है वो मेला।
हाँ।
जो माघे पूर्णिमा है,
हाँ।
जो माघे पूर्णिमा में मतलब ये फरवरी में आएगा सर, उसमें मेला लगता है, जो भव्य मेला रहता है वो 3 दिन का रहता है।
जी जी जी।
ये अपना 2 दिन है ना सर, माघे पूर्णिमा में
हाँ।
और मकर संक्रांति को।
तो दुर्गाराम जी, जैसा आपने बताया कि इन दोनों समय में मेले लगते हैं,
जी सर,
मेले में क्या क्या होता है, किस तरह के दृश्य होते
हैं? मेले में सर ये क्या है कि खिलौने भी ले आते हैं, एक से एक मिठाई भी रहता है, झूला रहते हैं।
क्या बात है,
छोटे झूला बड़े झूला, अने मतलब कहा जाए तो आजकल व्यापारी जो है कहीं न कहीं अपने आमदनी को बढ़ाने के लिए और साथ साथ लोगों को एक सुख और सुविधा देने के वास्ते सब व्यवस्था करके आते हैं। तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक का सही का ख्याल रखते हैं सर।
हम ये जानना चाह रहे हैं दरअसल मेले की रौनक किस तरह की होती है, क्या क्या होता है?
अब वो वहाँ ऐसा है सर, जैसे अपन छोटा मोटा कार्यक्रम होता है, समय सर के हिसाब से जैसे लोगों में ज्यादा रौनक होता है तो बड़ा कार्यक्रम हो जाता है, जैसे यज्ञ है, वो अपना भागवत है, नौधा रामायण है, और नाचा है अपने छत्तीसगढ़ का एरिया का।
अच्छा, वाह।
और बड़ा कार्यक्रम कहा जाए तो उसको आप प्रोग्राम कहते हैं सर, जो ऑर्केस्ट्रा वाला ऐसा सबो कार्यक्रम होता है उस समय, और दिन भर चलता रहता है एक दूसरे का जो टेप वाला गाना, तो उसमें गाना बजते रहता है और भजन चलते रहता है, लोगों में काफी उत्साह रहता है सर। हाँ।
तो जो आप बचपन से चूंकि उस इलाके में रहे हैं,
जी जी,
तो ये ऑर्केस्ट्रा और बड़े बड़े ख्याति लब्ध कलाकारों के प्रोग्रामों को छोड़ दिया जाए, तो ऐसे मेलों में हमारी संस्कृति पलती पूछती है।
जी जी जी।
तो उस तरह के जो छत्तीसगढ़ी नाचा और इस तरह के कार्यक्रम आपने बताए हैं,
जी सर,
वो क्या अनुभव है आपके, आपको कौन कौन से ऐसे नाचा के गम्मत के कार्यक्रम याद आ रहे हैं?
अब वो पार्टी का याद का नाम नहीं आ रहा है, कार्यक्रम का वहाँ जो दृश्य है एक मनमोहक रहता है सर। आज की जो परिवेश के हिसाब से जो नाचा गम्मत करते हैं उनके अनुरूप उन लोग ढाल कर एक नाटक के माध्यम से जनताओं को एक प्रकाश देता है कि आप किस परिवेश में हैं और किस लगन में चल रहे हैं, उसके अनुरूप वो ढाल कर उसको दिखाते हैं और सुनाते हैं और समझाते हैं, ताकि आप अच्छे कार्य में अपना दिनचर्या को लगाओ
जी।
एक बड़ा संदेश देते हैं सर।
जी बिल्कुल जरूर। और नाचा गम्मत में जोकड़ भी होते हैं जो आते हैं, और बहुत गहरी गहरी बात भी अपनी हंसी मजाक
डांसिया आता है, उसके बाद जोकड़ आते हैं, जोकड़ आते हैं, फिर परी आता है, ये सब बहुत चीज है सर उसमें।
बहुत हमारी सांस्कृतिक छटा बहुत निराली है,
और
ऐसे ही मेलों में ये सारी चीज जिंदा
देखने को मिलता है।
वाकई लोगों से आग्रह है हरपा रेडियो के माध्यम से कि आपके आसपास को यदि मेले लगते हो तो हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति की बात होती हो, चाहे देश के संस्कृति की बात होती है,
जी
तो
जी
उसे जरूर देखने जाएं, उसे अपने आने वाली पीढ़ी को दिखाएं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स तो आपको टीवी में और बड़े बड़े मंचों में शहरों में देखने को
मिल जाता है,
लेकिन इस तरह की चीजें अब कम हो रही है, लेकिन जहां भी हो रही है उसे जरूर आप देखें। तो बताइए दुर्गाराम जी,
जी जी सर,
इस नोट पर, इस जगह पर आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
इसमें हमराज फिल्म का है सर जी, नीले गगन पे तले।
चलिए आपको सुनवा रहे हैं हमराज फिल्म का ये गीत, नीले गगन के तले।
नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। बलखाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले।
आप तक पहुंचा नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। जी हाँ, और धरती की खूबसूरत सी जगह चरडोंगरी है, और वहां से हमारे साथ बातचीत में है हमारे सप्ताह के श्रोता दुर्गाराम साहू जी। चरडोंगरी बहुत खूबसूरत जगह है, कबीरधाम भी बहुत खूबसूरत जगह है, पहाड़, हरियाली, इन तमाम चीजों के दृश्य अभी हमारे सामने दुर्गाराम साहू जी ने देखे ही है। दुर्गाराम साहू जी, गीत से पहले आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे अपनी बातचीत में, बताइए क्या कहना है।
अब रेडियो पे ही आ जाते हैं सर, जो लगन जो है रेडियो के ही माध्यम से हुआ है, तो धीरे धीरे एक संगठन बनाया, समूह बनाया, जो अपना जय छत्तीसगढ़ रेडियो श्रोता संघ के माध्यम से एक श्रोताओं को अपने बीच में जोड़ा।
अच्छा।
और जोड़ने के साथ साथ लोगों में हम प्रेरित किए कि आप रेडियो सुनो, और रेडियो से जो ज्ञान मिलता है, खेती बाड़ी करना कैसे है, हमको स्कूल में पढ़ाई भी करना है तो किस चीज का ज्ञान हमको लेने की आवश्यकता होती। जैसे स्कूल में कोई प्रश्न पूछ देता है सर जी सामान्य ज्ञान, और उसको हमको जानकारी नहीं रह पाता है, तो रेडियो के माध्यम से हमको वो ज्ञान पहले से मिल जाता है, और उसको आने वाले समय में जैसे सर जी पूछते हैं शिक्षा गुरु जी मन, तो उसको बताने में सक्षम हो जाते हैं। तो रेडियो के माध्यम ऐसा हुआ सर सफर, जो आज भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और एक संगठन के माध्यम से मैं अभी तक एक श्रोताओं को भी कहा जाए और एक किसान भाइयों को भैया को कहा जाए। 25 रेडियो अभी तक एक समूह के माध्यम से दे चुके हैं, रेडियो एक सप्रेम भेंट के रूप में उनको दिया हूँ सर।
अच्छा,
संगठन के माध्यम।
आपका एक संगठन है जो रेडियो भेंट करता है।
जी सर।
वाह, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब आप जो प्रसार का जो माध्यम है, प्रचार का माध्यम है, वो लोगों तक पहुंचाते हैं।
जी जी सर, समय समय पे पेपर में भी छपते थे और लोगों को भी मतलब एक दूसरे को मतलब
ये
ख्याल करते थे।
हाँ, ये ख्याल कैसे आया कि हाँ रेडियो बांटा जा सकता है?
फोन रेडियो ऐसा है सर, देखो हम रेडियो ही सुनेंगे तभी हमको जानकारी मिलेगा, और जितना आजकल खेती बाड़ी में जो तकनीक कम थे तो एक चौपाल था कार्यक्रम
जी जी
कृषि चर्चा, ये ऐसे इस में पूरे जानकारी हमको खेती बाड़ी के माध्यम से मिल जाते थे। तो हमको एक सोच लगा कि अगर हम किसी को अगर सम्मान करते हैं बुजुर्ग ज्ञान को तो उनका आशीर्वाद कहीं ना कहीं हमको मिले,
क्या बात,
ये हमारा भी ये लालसा था। तो उनका हम सम्मान कैसे करें, तो कुछ कार्यक्रम होता था अपना, जैसे आकाशवाणी प्रसारण करना है तो उसका कुछ मूलभूत हमको मिल जाता था, कहा जाए तो एक अनुदान के रूप में राशि। तो हमने सोचा कि इस राशि को हम अपने घर पे उपयोग ना करके इसको हम रेडियो ले लें, और रेडियो लेकर हम दूसरे व्यक्ति को अगर देंगे तो वो भी रेडियो सुनेगा और उसको ज्ञान भी मिलेगा, और उसी घर में जो है बच्चे अगर पढ़ लिख रहे हैं उनको भी वो ज्ञान मिलेगा कि खेती बाड़ी और साथ साथ पढ़ाई लिखाई में और मनोरंजन भी हो जाता है। उसी बीच में मेरे एक कमलकांत मित्र है अपने पिपरिया का, हम दोनों मिलकर नहीं वो भी बनाया एक संगठन और मैं भी बनाया। संगठन तो पहले से मेरा था जरूर, लेकिन उतना प्रचार प्रसार नहीं किए थे, क्या है कि उतना सभी लोगों के पास उम्मीद नहीं बढ़ा था। जब हम दोनों चले ना तब तो सभी लोगों में थोड़ा एक उम्मीद जागा कि चलो यार हम भी ऐसा करते हैं सुनते हैं, तो उस हिसाब से लगन धीरे धीरे बढ़ता गया और लोगों में ज्यादा उम्मीदें बढ़ी, और जैसे उम्मीद ही बढ़ा और उसके बाद आजकल मोबाइल में जो सिस्टम आया उस हिसाब से रेडियो का जो महत्व है जो उनका बनावट है रेडियो का वो तो कमी हो गया, वो एहसास हमको दिलाते रहेगा, लेकिन प्रसारण जो है कहीं ना कहीं अपना लगातार निरंतर चलता आ रहा है, यह हमको मोबाइल के माध्यम इंटरनेट के माध्यम से सुनने को मिल रहा है, लेकिन जो महत्व जो एक हम रेडियो को धर कर चलते थे या किसी जगह बैठ कर अगर चार लोग सुनते थे तो उसका जो मनमोहक आवाज और लोगों को जो देखने का जो दृश्य था
जी जी जी
वो एक काफी मनमोहक था सर।
वाह वाकई, वो आपने तमाम पुरानी यादें खींच लाई हैं सामने कि रेडियो ट्रांजिस्टर सुनना, उसे निडिल से स्टेशन मिलाना, अब वो मोबाइल तक पहुंच गई है चीजें, और आप बटन से अपना रेडियो स्टेशन सर्च कर लेते हैं और सर्च करके ट्यून अप कर लेते हैं। लेकिन आपने एक बहुत जरूरी बात कही थी कि रेडियो बांटने की शिक्षा, मनोरंजन और सूचना और लोगों तक पहुंचे, उसलिए आप रेडियो बांटने का काम करते हैं, और वाकई स्कूली शिक्षा तो बहुत जरूरी है, लेकिन स्कूली शिक्षा को और पुख्ता करने के लिए रेडियो और उसमें प्रसारित कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो हमारी शिक्षा को और गहरे तक हमारे भीतर उतारते हैं। हम आपकी बातचीत से ही समझ पाए हैं कि वाकई रेडियो बहुत जरूरी है शिक्षा के साथ, मनोरंजन के साथ, सूचनाओं के साथ चलने वाला सदैव। तो अर्पा रेडियो का भी यही काम है, और इस अर्पा रेडियो की साझेदारी में आप तमाम श्रोता शामिल हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सप्ताह के श्रोता कार्यक्रम में दुर्गाराम साहू जी, आपने हमें वक्त दिया इस रिकॉर्डिंग के लिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं अर्पा परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मुझको एक अनुभव और जो ज्ञान दिए, और उस हिसाब से मुझको आज मौका मिला
जी जी
आपसे बात करने के लिए। इसके लिए मैं भी आप पूरे टीम को, अर्पा परिवार को और आकाशवाणी परिवार
जी जी
कहा जाए तो आकाशवाणी कई केंद्रों में है, और श्रोता मित्रों को भी जिनके माध्यम से मुझे एक दूसरे से जुड़ने का और अपने ज्ञान और ज्ञान लेने का एक मौका मिला, मैं इसके लिए आप सबका शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल, हम भी बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे सुनने वालों के लिए, तो तमाम सुनने वालों को शुक्रिया। नमस्ते कार्यक्रम से फिलहाल विदा लेते हैं,
धन्यवाद।
सप्ताह के श्रोता, हमारा ये साप्ताहिक कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे अर्पा रेडियो पर, जिसमें आज के हमारे मेहमान श्रोता साथी थे चरडोंगरी पिपरिया कबीरधाम के दुर्गाराम साहू, और इनसे आज आपके लिए बातचीत की सुनील चिपड़े ने।
आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।